ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार नक्सल ग्रस्त क्षेत्रों में शांति स्थापित करने और नक्सलियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज नई दिल्ली के एम्स जाकर नक्सल विरोधी अभियान के दौरान घायल जवानों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजापुर जिले के गलगम में जवानों से मुलाकात कर उनके अदम्य साहस को नमन किया। और बलरामपुर जिले में बारातियों को ले जा रही बस खाई में गिरी, 3 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार नक्सल ग्रस्त क्षेत्रों में शांति स्थापित करने और नक्सलियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर सफल नक्सल विरोधी अभियान के बाद गृह मंत्री अमित शाह का सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों की सफलता दर्शाती है कि नक्सलवाद के खिलाफ अभियान सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल कहा था कि सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कर्रेगुट्टा पर्वतीय क्षेत्र में एक व्यापक अभियान में 31 माओवादियों को मार गिराया। उन्होंने अब तक के इस सबसे बड़े अभियान को अगले वर्ष 31 मार्च तक नक्सल मुक्त भारत के संकल्प की दिशा में ऐतिहासिक सफलता बताया। उन्होंने कहा कि सरकार नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले कल बीजापुर में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम और बीजापुर के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि यह अभियान 21 दिन तक चला। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा पर करेगुट्टा पहाड़ियों में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान घायल हुए सुरक्षा कर्मियों से दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद थे। श्री शाह ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट कर जवानों से मुलाकात की जानकारी देते हुए लिखा कि हमारे जवान अपनी वीरता से नक्सलवाद का नामो निशान मिटा रहे हैं। गौरतलब है कि इस ऑपरेशन में कोबरा बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट सागर गणेश बोराडे, हेड कांस्टेबल मुनेश चंद्र शर्मा, कांस्टेबल कृष्ण कुमार गुर्जर और कांस्टेबल धनुराम घायल हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बीजापुर जिले के गलगम में जवानों से मुलाकात कर उनसे बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जवानों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जवान 44 डिग्री तापमान में भी माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं, मैं उनके अदम्य साहस को नमन करता हूं।
जो कर्रेगुड़ा की पहाड़ी है उसमें जो सबसे बड़ा अभी तक का और सफल नक्सली ऑपरेशन किया और जिस साहस के साथ आप लोगों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, तो आज आप लोगों को धन्यवाद देने आए हैं, आप लोगों का अभिनंदन करने आए हैं और हम आप लोगों के स्वर को नमन करते हैं। 44 डिग्री गर्मी में आप सब लोगों ने इस ऑपरेशन को सफल किया और 31 नक्सलियों को आप लोगों ने मार गिराया। मैं आप लोगों के अदम्य साहस को नमन करता हूं, आप लोगों के स्वर का मैं तारीफ करता हूं।
इस दौरान बीजापुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री को बताया कि गलगम में कैंप स्थापित होने के बाद इस क्षेत्र में लगातार नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल राजधानी रायपुर में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा की जब भी बात आएगी हम सभी एक हैं। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा में सभी वर्गों के लोग, सेवानिवृत्त सैनिक, समाज सेवी संगठन और बच्चों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर एकजुटता, देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव का संदेश दिया है।
जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उनको हम लोग नमन करते हैं, हमारे देश के सैनिकों को नमन करते हैं, उनके अदम्य साहस को, उनके शौर्य को हम लोग नमन करते हैं। और इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम सब लोग ये प्रदर्शित करने का प्रयास किए हैं कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हम सब लोग एक हैं।
रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से आज हम एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले का जवाब ऑपरेशन सिंदूर हमारे अभिमान का प्रतीक है। प्रदेश में मनाए जा रहे सुशासन तिहार के तीसरे चरण के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दंतेवाड़ा जिले के मुलेर गांव पहुंचे। मुख्यमंत्री ने चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनका निराकरण करने का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने राशन दुकान का निरीक्षण कर हितग्राहियों से बातचीत भी की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मुलेर गांव में अंदल कोसम माता मंदिर निर्माण के लिए 4 लाख रूपये देने की घोषणा की। साथ ही गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना सहित विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए राशि देने की बात कही। उन्होंने कहा कि गांव में जल्द ही शिविर लगाकर वनाधिकार मान्यता पत्र, आधार कार्ड और आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। दुर्ग जिले की सुपेला पुलिस ने अपनी पहचान छुपाकर अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि यह कार्रवाई अवैध अप्रवासियों के लिए गठित स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ द्वारा की गई है।
ये महिला लगभग 1-1.5 साल से यहाँ रह रही थी। उससे पहले लगभग 5 वर्ष पश्चिम बंगाल में रही है, दिल्ली में कुछ समय रही है। और अभी तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक ये महिला आजीविका की तलाश में यहाँ आई थी और वो घरेलू कामकाज करती थी। इनके पास से एक आधार कार्ड मिला है, उसकी फोटोकॉपी मिली है, वो किसी दूसरी महिला के नाम पे है। और उसका आधार कार्ड जब चेक किया गया तो ये महिला और उस महिला में काफी अंतर। इसमें न्यायालय पेश किए जा रहे हैं, उनके जो नंबर्स है, कुछ नंबर्स उनके मोबाइल में भी मिले, उनकी तस्दीक की जा रही है।
बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में आज बारातियों को लेकर जा रही एक बस अनियंत्रित होकर पहाड़ से पलट गई। इस हादसे में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बस में 70 से अधिक लोग सवार थे जो झारखंड में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान चांदो थाना क्षेत्र के कंठी घाट के पास बस अनियंत्रित होकर लगभग 50 फीट खाई में जा गिरी। सूचना मिलने पर चांदो पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में अमरकंटक गौरेला मार्ग पर कल एक पिकअप वाहन के खाई में गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई, वहीं 15 अन्य लोग घायल हो गए। पिकअप वाहन में 16 लोग सवार थे। बलरामपुर जिले के लिबरा गांव में बीते 12 मई को हुई एक आरक्षक की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को झारखंड से गिरफ्तार किया है। आरक्षक को कुचलने के लिए उपयोग में किए गए 2 ट्रैक्टरों को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। खनिज विभाग के सचिव पी दयानंद ने प्रदेश में रेत के अवैध खनन और परिवहन पर नियंत्रण लगाने के निर्देश दिए हैं। श्री दयानंद ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टरों और खनिज विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर स्पष्ट निर्देश दिए कि रेत के अवैध खनन और परिवहन में शामिल संदिग्ध लोगों पर कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स के माध्यम से निगरानी की जाए। इस बीच जांजगीर चांपा जिले में दहिदा गांव के हसदेव नदी पर खनिज विभाग की टीम ने रेत का अवैध उत्खनन करते 2 चेन माउंटेन को जब्त किया है। संस्कार भारती छत्तीसगढ़ द्वारा स्वर्गीय अशोक चंद्राकर की स्मृति में कल 16 मई से 3 दिवसीय रंग संस्कार महोत्सव का आयोजन रायपुर के रंग मंदिर में किया जाएगा। संस्कृति विभाग के सहयोग से आयोजित होने जा रहे इस महोत्सव में 3 दिनों तक अलग अलग नाटकों का मंचन होगा। पहले दिन संत फरीकार के निर्देशन में शहीद वीर नारायण सिंह की लोक गाथा का मंचन किया जाएगा। आकाशवाणी केंद्र रायपुर में प्रसारण सहायक के रूप में कार्य करने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। प्रसारण सहायक के लिए आवेदक का स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है और उसकी आयु 1 जुलाई 2024 को न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक को हिंदी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होने के साथ ही कंप्यूटर टाइपिंग की जानकारी होना आवश्यक है। इच्छुक उम्मीदवार 20 मई की शाम 6 बजे तक अपने आवेदन केंद्र निदेशक आकाशवाणी रायपुर के पते पर भेज सकते हैं। रायपुर नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले इच्छुक आवेदक आकाशवाणी केंद्र रायपुर से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। आवेदनों की जांच के बाद पात्र उम्मीदवारों को दूरभाष से सूचित किया जाएगा। पात्र उम्मीदवारों का साक्षात्कार 26 मई को होगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 9 जून से नए रोस्टर के अनुसार मामलों की सुनवाई होगी। इस संबंध में रजिस्ट्रार जनरल ने अधिसूचना जारी कर दी है। नए रोस्टर के अनुसार 4 डिवीजन बेंच और 16 सिंगल बेंच में याचिकाओं की सुनवाई की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश विभू दत्ता गुरु की बेंच जनहित याचिकाओं, अवमानना मामलों, हेबियास कार्पस, क्रिमिनल अपील और बीएनएस के मामलों पर सुनवाई करेगी। वहीं न्यायाधीश संजय के अग्रवाल और दीपक कुमार तिवारी की बेंच टैक्स मामलों की अपील, अतिरिक्त क्रिमिनल मामले और डिवीजन बेंच के रिट मामलों पर सुनवाई करेगी। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल प्रदेश में एक दो स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। वर्षा का मुख्य क्षेत्र दक्षिण छत्तीसगढ़ रहेगा। इस दौरान गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और वज्रपात होने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने 19 मई तक प्रदेश के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना जताई है। इसके बाद तापमान में गिरावट हो सकती है। इस बीच महासमुंद जिले के कोलदा गांव में आज शाम आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार नक्सल ग्रस्त क्षेत्रों में शांति स्थापित करने और नक्सलियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज नई दिल्ली के एम्स जाकर नक्सल विरोधी अभियान के दौरान घायल जवानों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजापुर जिले के गलगम में जवानों से मुलाकात कर उनके अदम्य साहस को नमन किया और बलरामपुर जिले में बारातियों को ले जा रही बस खाई में गिरी, 3 लोगों की मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।